कैलिफोर्निया स्काई मेंशन। स्काई अपनी बालकनी की कुर्सी पर बैठा हुआ था और उसके हाथ में प्लेट थी जिसमें चाइनीज फूड रखा हुआ था, लेकिन स्काई उस खाने को खा नहीं रहा था। वो बस चम्मच से उस खाने को गोल गोल घुमाकर वापस प्लेट में रख देता था। स्काई चम्मच को गोल गोल घूमते हुए आसमान में खाली आसमान को देख रहा था। आज उस आसमान में ना तो चांद था और ना ही तारे, दूर दूर तक सिर्फ काला आसमान ही नजर आ रहा था। तभी बालकनी का दरवाज़ा खुलता है और जेनी अंदर आती है। जेनी स्काई के सामने वाली कुर्सी पर बैठते हुए कहती है, क्या बात है स्काई, तुमने अभी तक खाना नहीं खाया? स्काई के चेहरे पर एक हल्की सी मजाकिया मुस्कान आ जाती है और वो प्लेट में रखे हुए उस चाइनीज फूड को देखते हुए कहता है, खाना? लग रहा था कि स्काई खुद पर ही हंस रहा था। वो उस प्लेट को वापस टेबल पर रख देता है और अपनी जगह से खड़ा हो जाता है। स्काई अंदर जाने के लिए मुड़ता है और जेनी से ये कहते हुए अंदर की तरफ चला जाता है, मुझे भूख नहीं है, तुम चाहो तो खाना खा सकती हो। स्काई अलमारी के पास जाता है और अपनी अलमारी खोलकर एक पुरानी फोटो अलमारी के बीच में से निकालता है। उस तस्वीर में अरुणिमा थी और उसकी गोद में दो बच्चे थे। उन दोनों बच्चों के हाथों में एक एक गुलाब का फूल था और वो दोनों उस गुलाब के फूल को अरुणिमा के बालों में लगा रहे थे। स्काई अरुणिमा की तस्वीर पर अपने हाथ रखते हुए अपने मन में कहता है, मिस यू मा, मम्मा आपसे बहुत प्यार करती है आकाश। ये आवाज़ स्काई को अपने कानों में महसूस होती है और वो हैरानी से इधर उधर देखने लगता है। उसे ऐसा लगता है जैसे अरुणिमा उसके आसपास ही है और वो उसे बुला रही है। स्काई बेचैनी से अपने कमरे में हर जगह अरुणिमा को तलाश करने लगता है, लेकिन जब उसे एहसास होता है कि अरुणिमा यहाँ नहीं है तो उसके हाथों की मुठ्ठियाँ कस जाती है। स्काई का चेहरा गुस्से में भर जाता है और उसके चेहरे की नसें दिखने लगती है। उसने अपने हाथों के मुक्के को एक झटके में सामने शीशे पर्दे पर मारा जिससे वो शीशा चकनाचूर हो गया और स्काई के हाथों से खून निकलने लगा। स्काई कमरे में मौजूद हर चीज को उठाकर जमीन पर फेंकने लगा जिससे वो चीज तबाह हो गई। जेनी जो बालकनी में थी, जब उसने कमरे से आई हुई आवाज़ों को सुना तो वो जल्दी से कमरे में आती है और अपने सामने का नज़ारा देखकर उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो जाती है। वो जल्दी से स्काई के पास जाती है और उसके बाजू को पकड़कर उसे रोकते हुए कहती है, क्या कर रहे हो स्काई, पागल हो गए हो क्या, सामान क्यों तोड़ रहे हो? लेकिन स्काई ने गुस्से में जेनी को ही एक धक्का मार दिया जिससे जेनी पीछे की दीवार पर जा गिरती है। स्काई जेनी को गुस्से भरी नजरों से घूर कर देख रहा था। जेनी कांप गई थी और उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो गई थीं, क्योंकि स्काई का गुस्सा वो अच्छी तरह से जानती थी और वो उसके गुस्से का सामना नहीं करना चाहती थी। चली जाओ यहाँ से, इससे पहले कि मैं तुम्हारी जान ले लूँ, स्काई ने चिल्लाते हुए कहा, तो अगली ही पल जेनी उस कमरे से भाग जाती है। स्काई का पागलपन अभी भी उस पर हावी हो रखा था। उसने सारे कमरे को तबाह कर दिया था। पूरा फर्श कांच से भरा हुआ था और वो फर्श पर बैठ जाता है। उसके हाथों और पैरों से खून निकलने लगा था, लेकिन इस खून से भी ज्यादा अगर कुछ लाल था तो वो थी उसकी आंखें, जिसमें इस समय नफरत और गुस्सा साफ नजर आ रहा था। वो जोर जोर से चिल्लाते हुए कहता है, किसी की जरूरत नहीं है मुझे, चले जाओ सब यहाँ से, मुझे किसी की जरूरत नहीं, मैं अकेला रहना चाहता हूँ, मुझे अपनी जिंदगी में कोई भी नहीं चाहिए, मुझे नहीं चाहिए आप लोग, तो आप मेरे जहन में आना बंद कीजिए, मत याद आइए मुझे, क्योंकि मैं आप लोगों से सारे रिश्ते तोड़ चुका हूँ। कहते हुए स्काई अपना चेहरा नीचे झुका लेता है और कस के अपनी आंखें बंद कर लेता है। वो अपने गुस्से पर कंट्रोल करना चाहता था, पर उसका गुस्सा आउट ऑफ कंट्रोल होता जा रहा था। उसकी आंखों के सामने अचानक से अरुणिमा का चेहरा आ जाता है जो मुस्कुराते हुए उसे अपने पास बुला रही थी। आकाश, आजा मेरे बच्चे। स्काई का चेहरा, उसका गुस्सा, उसकी फ्रस्ट्रेशन, ये सारा एक मिनट में आंसू के जरिए उसकी आंखों से बहने लगा। उसने अपनी आंखें बंद किए हुए ही अपने हाथ को उठाया और धीरे से अरुणिमा को पकड़ना चाहा, माँ। और इसी के साथ स्काई की आंखों के सामने अंधेरा छा जाता है और वो वहीं कांच से भरे हुए फर्श पर बेहोश हो जाता है। जेनी जल्दी से जॉन के रूम में आती है और उसे स्काई के बारे में बताती है। वो लोग जैसे ही स्काई के कमरे में जाते हैं तो स्काई अपने कमरे में बेहोश था। उसे ऐसे देखकर वो दोनों घबरा जाते हैं और जल्दी से स्काई को दूसरे कमरे में ले जाते हैं। जॉन जल्दी से फोन निकालता है और डॉक्टर डैन को फोन करता है। पिछले 10 साल से जॉन और स्काई साथ में है। उसे खुद नहीं पता था कि ये क्यों हो रहा है, लेकिन स्काई ने उसे एक बात पहले से ही आगाह कर दी थी कि अगर उसके साथ कभी भी कुछ ऐसा हो जो कि अनएक्सपेक्टेड हो तो सबसे पहले कॉल वो डॉक्टर डैन को ही करे, और तब से ये सिलसिला चला आ रहा है। जब भी स्काई बेहोश होता है तो जॉन डॉक्टर डैन को फोन कर देता है। आधे घंटे के बाद ही डॉक्टर डैन स्काई के मेंशन में आते हैं और वो सीरियसली उसे चेक करते हैं। वो सबसे पहले जेनी और जॉन को कमरे से बाहर जाने के लिए कहते हैं। जेनी गुस्से में कहती है कि वो स्काई को छोड़कर कहीं नहीं जाएगी क्योंकि वो उसकी गर्लफ्रेंड है, लेकिन डॉक्टर डैन को आस्तिक से किया हुआ अपना वादा याद था कि स्काई को या फिर किसी को कभी पता नहीं चलेगा कि उसकी थेरेपी हो रही है। स्काई को आज तक अपनी बीमारी के बारे में नहीं पता था और ये भी नहीं पता था कि डॉक्टर डैन सिर्फ उसके काउंसलर नहीं है बल्कि उसके डॉक्टर भी हैं।
डॉक्टर डैन एक प्रोफेशनल डॉक्टर थे, इसीलिए उन्होंने उन लोगों की एक बात भी नहीं सुनी और जेनी और जॉन को कमरे से बाहर भेज दिया। डॉक्टर डैन ने स्काई को चेक करना स्टार्ट किया और उसे इंजेक्शन दे दिया। आधे घंटे के बाद जब स्काई को होश में आता है तो डॉक्टर डैन उसकी थेरेपी स्टार्ट करते हैं। उसका हेड मसाज, ऑयलिंग, एक्यूप्रेशर और कुछ नॉर्मल सवाल जवाब। स्काई को हमेशा से लगता आया है कि डॉक्टर डैन उसके साथ काउंसलिंग कर रहे हैं, क्योंकि हमेशा से ही डॉक्टर डैन जब भी स्काई के साथ क्वेश्चन आंसर करते तो हमेशा वो स्काई के पैरों को अपने हाथों से एक्यूप्रेशर के जरिए थेरेपी देना स्टार्ट देते थे। और स्काई को कभी इस बात का एहसास ही नहीं हुआ कि ये सिर्फ नॉर्मल सवाल जवाब नहीं है, बल्कि डॉक्टर डैन उसके दिमाग के संतुलन को चेक कर रहे हैं। स्काई को एक इंजेक्शन देने के बाद और कुछ मेडिसिन देने के बाद डॉक्टर डैन ने उसके जख्मों की पट्टियां भी कर दी थी। उसको पूरे दिन आराम करने का बोलकर डॉक्टर डैन वहां से निकल जाते हैं। स्काई मेंशन से निकलने के साथ ही डॉक्टर डैन अपनी गाड़ी में बैठने ही वाले थे कि उन्होंने अपना फोन निकाला और किसी को फोन कर दिया।